ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीन बार ओम शांति बोलते हैं तो दादी जी को भी याद करते हैं साथ में। और दादी जी ने मंत्र जो पक्का कराया साथ, तीन बार ओम शांति बोलने के साथ, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, क्योंकि तीनों ही बातें ज्ञान का सार है, इसेंस है। और ये बात अगर हमारी स्मृति में पक्की हो जाए तो जो ज्ञान की धारणा है प्रैक्टिकल हमारे जीवन के अंदर, वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। सारा दिन में हमको कितना समय ये स्मृति रहती, मैं कौन। अभी पूछेंगे मैं कौन, एक तो होता है जो 7 दिन के कोर्स वाला बच्चा है ना, उसको पूछते हैं मैं कौन, तो आंसर आता है मैं आत्मा। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाबा पूछते हैं मैं कौन, आप कौन हैं, तो फिर बाबा ने क्या कहा, सिर्फ इतना नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो साथ साथ अपने सत्य स्वरूप में जो हमारे ओरिजिनल गुण, हमारी जो विशेषताएं, और बाबा ने जो अनेक स्वमान हमको दिए, उन स्वमानों की भी स्मृति, जितनी हमको वो स्मृति रहती है और उस स्मृति को हम प्रैक्टिस में लाते हैं, उतना उतना नशा चढ़ता है, खुशी चढ़ती है। अगर सार रूप में एक शब्द में ज्ञान की धारणा की बात को हम बोलें तो बाबा ने इस सेंस में बताया खुशी, जिससे हमारी स्थिति की चेकिंग हो सकती कि कितनी कितनी हमारी स्थिति ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो किससे चेक होगा। जितनी खुशी मेरी ऊपर गई आज, या ग्राफ थोड़ा नीचे आया, तो इसीलिए ये चेकिंग है। और सारा दिन में भी, सुबह से लेकर के रात्रि तक, अगर हम इस बात को देखें कि सारा दिन में, सुबह जब हमने शुरू किया, उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग किया, वहाँ से लेकर के फिर अमृत वेला हम बैठे, बाबा से विशेष वरदान लिए, खुशी बढ़ती। फिर मुरली सुनते तो और नशा चढ़ता है, और खुशी बढ़ती है। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने व्यवहार में, फिर और आत्माओं के कनेक्शन में आते हैं। अब सारा दिन में अगर ग्राफ की तरह देखें तो खुशी ऊपर जा रही थी या ऐसे ही थी, सेम जितनी सुबह थी उतनी ही थी सारा दिन में, या कभी ऊपर और कभी नीचे। सभी मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब तो कभी ऊपर कभी नीचे। और इसका फिर अति सूक्ष्म कनेक्शन बाबा ने प्योरिटी के साथ, पवित्रता के साथ बताया है। आज जो बाबा ने खास पवित्रता की निशानी कहे, तो बाबा ने क्या कहा है आज खास, रूहानी रॉयल्टी। याद है आज का वरदान? और रूहानी रॉयल्टी कैसे दिखाई देगी? चेहरे और चलन से। और जब हम बात कर रहे हैं रूहानी रॉयल्टी, बाबा ने सिर्फ रॉयल्टी नहीं कहा है, रूहानी रॉयल्टी कहा है, क्योंकि हो सकता है कलयुग की स्मृति में या अभी की जो अवेयरनेस है आत्माओं की, उसके हिसाब से रॉयल्टी की बात करें तो बाहर की बहुत सारी चीज़ें उसकी परिभाषा दे देंगे। जैसे कोई इमेजिन करके देखें, कोई रॉयल फैमिली वाला है, बहुत राजाई घराने वाला, तो वो रॉयल्टी कैसे दिखाई देगी? आम लोग जब उसको डिफाइन करेंगे तो रॉयल्टी को कैसे बताएंगे? हो सकता है वो बाहर की बहुत सारी चीज़ें बताएं, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, ना कैसा, लेकिन वो जो देह अभिमान वाली रॉयल्टी होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं अभिमान, ईगो कि हम कुछ हैं, वो वाला नशा होगा, उल्टा नशा। पर जब बाबा कहते रूहानी रॉयल्टी, तो रूहानी रॉयल्टी में जब बाबा ने कहा कि चेहरे और चलन से दिखाई देगी, तो क्या दिखाई देगा? इस रॉयल्टी के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हमने कोई ऐसा पहनावा, हमारा कोई विशेष हमने बनाना है, कुछ भी नहीं है। कितने साधारण हैं बाबा के बच्चे, फिर भी जब हम किसी को देख करके अगर हमें ये लगता कि ये बहुत रॉयल है, ये बहुत रॉयल है, तो हम उसमें क्या चीज़ देखते जो हमें लगता ये रॉयल है, इसमें रॉयल्टी है? क्योंकि जो अंदर की स्थिति है वो ही चेहरे और चलन में दिखाई देगी। बाबा ने दो चीज़ों का कनेक्शन बता दिया कि अंदर अगर प्योरिटी है, और फिर मुरली में आज बड़ी छोटी छोटी ऐसी बातें बाबा ने बताई हैं जिसका संबंध प्योरिटी के साथ है, क्योंकि हमारे लिए प्योरिटी की डेफिनेशन पवित्रता सिर्फ स्थूल रूप की डेफिनेशन नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। और बहुत सारी आज बाबा ने चीज़ें उसके बारे में बताई हैं, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जो अंदर जितना सूक्ष्म लेवल पर, जितना डीप लेवल पर पवित्रता प्योरिटी होगी, उतना चलन और चेहरे में रॉयल्टी होगी। तो ये दो चीज़ें आपस में संबंधित हैं, कनेक्टेड हैं। अब हमारा योग क्या है? राजयोग है। तो हम सब कौन है? राजयोगी हैं, राजयोगी हैं, माना राजा बनने वाले। राजा भी नहीं, बाबा ने कहा राजाओं के भी राजा। अब राजा बनना एक सीट से ज्यादा एक स्थिति की बात है। राजा बनना सीट नहीं है, कुर्सी नहीं है, इस वक्त राजा बनना स्थिति है। तो राजा वाली स्थिति, आज मैं राजा वाली स्थिति में हूं या नहीं हूं कैसे पता चलेगा? रॉयल्टी की बात कर रहे हैं ना, तो राजा वाली स्टेज होगी तो रॉयल्टी दिखाई देगी। आज मैं राजा की स्थिति में हूं कैसे पता पड़े? राजा माना क्या? कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, बहुत अच्छा। और राजा माना क्या? स्वराज्य अधिकारी, दूसरे शब्दों में। एक अच्छी सी बात सुनाते हैं, राजा माना भरपूर, राजा माना जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो आज पूरा दिन में क्या मेरी वो स्थिति रही कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए? या थोड़ा थोड़ा चाहिए? चेकिंग की बात है ना, क्योंकि ये चाहिए, जैसे ही हमने कहा चाहिए तो हमारा हाथ कैसे हो गया? और ये बाहर वाला हाथ नहीं है, ये मन का हाथ है, मन का हाथ है। अंदर से जो हमारी स्थिति है उसकी बात है। हमने बोला भी नहीं, शब्दों में भी नहीं कहा, लेकिन मन में आया, थोड़ा सा विचार आया कि इसको थोड़ा सा मुझे रिस्पेक्ट तो देना चाहिए ना, कम से कम मैंने इतना किया तो ये थोड़ा मान तो दे। अच्छा, और कुछ नहीं, थोड़ा सा मुस्कुरा के तो बात करना चाहिए ना। तो ये सभी बातों में क्या आ रहा है, चाहिए, इसको मुस्कुरा के बात करना चाहिए, इसको मुझे मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, दोनों में ही क्या आ रहा है, चाहिए। तो मेरे मन का हाथ कैसे है, उस वक्त राजा हूँ, बेगर हो गए ना, और बाबा तो बेगर से प्रिंस बना रहे। अब जब तक स्थिति मेरी बेगर से प्रिंस वाली नहीं बनी, तब तक रॉयल्टी कैसे दिखाई देगी। अंदर की मन की स्टेज में अगर थोड़ा भी चाहिए चाहिए है, कुछ भी चाहिए, तो नैन जो होंगे ना, चेहरा जो होगा वो नैन वरदानी नहीं होंगे, क्योंकि जो रॉयल्टी है, रूहानी रॉयल्टी जिसे हम कह रहे हैं, तो रूहानी रॉयल्टी में देने का भाव है। राजा मना, एक तो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, और दूसरा जो भी आए वो खाली हाथ ना जाए। दातापन की जो वृत्ति, दातापन की ही दृष्टि और वही स्थिति, तो मेरे नैन ऑटोमेटिकली दे रहे हैं, कुछ चाह नहीं रहे हैं। तो ये दिखाई देता है, किसी का भी चेहरा देखें, हम सब जानते हैं ना कि शब्द बनाए जा सकते हैं, बातें बनाई जा सकती हैं, सच को झूठ, झूठ को सच, बहुत सुंदर शब्द भी बनाए जा सकते, लेकिन जो आंखें हैं ना, ये बताती हैं, आंखें बताती हैं, नैन बताते हैं। तो जैसे आज बाबा ने जो कहा है कि चेहरे और चलन से दिखाई देगा, और चेहरे में भी जो नैन है, जो दृष्टि है, उससे दिखाई पड़ता है कि ये आंखें जो हैं ये लेने वाली हैं या देने वाली हैं। ऐसा नोटिस होता है ना, ऑटोमेटिकली होता है कि इसको मेरे से कुछ चाहिए, और जैसे ही दूसरे को देख करके किसी को लगेगा ना कि इसको मेरे से कुछ चाहिए, तो उससे दूर जाएंगे, पास नहीं आएंगे, क्योंकि सभी तो खाली हैं अभी। अब ये और कुछ लेने आया, चाहे मेरा समय चाहिए इसको, अभी ये बैठेगा और ये कुछ बात करेगा और व्यर्थ में मेरा टाइम जाएगा, हो सकता है समय चाहिए, अटेंशन चाहिए, अटेंशन चाहिए कि मेरी तरफ कोई ध्यान दे। सिर्फ इस अटेंशन के लिए लोग कितना कुछ करते हैं अभी आजकल, है ना, कि लोग मेरी तरफ ध्यान दें, उसके लिए पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा करते हैं। और कभी कभी छोटे बच्चों में भी हम देखते हैं ना, जो जिसको हम अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कहते हैं साइकोलॉजी में, माना आप उसकी तरफ अगर नहीं देख रहे हैं तो वो कुछ उठा करके फेंकेगा, तो वो कुछ उठा के फेंकेगा तो आप ज़रूर देखेंगे, या वो चिल्लाएगा, या फिर वो ज़मीन पर लेट जाएगा, तो कुछ तो ऐसा करूं ये मेरे को देखे। तो ये तो हुई बच्चे की बात, लेकिन ह्यूमन नेचर है ना। तो अभी जो लेने वाली आत्मा होगी उसके अंदर लगातार ऐसी कॉन्शियसनेस होगी, ऐसी स्मृति होगी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी तरफ ध्यान जाए या मेरे को कुछ इससे मिले। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, लेने का भाव है, दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती, लेना और देना नहीं हो सकता। अभी या तो मैं आपसे ले रही हूँ या फिर मैं आपको दे रही हूँ। तो रॉयल्टी माना, रॉयल्टी माना देने का भाव है, रॉयल्टी माना जो बाबा मुझे रोज़ पढ़ा रहे हैं, अब मैं आत्मा बाबा से ले रही हूँ, तो लेना सिर्फ मुझे बाबा से है, और बाकी जो भी मेरे सामने आए उसको मुझे देना है। और एक और बात बाबा ने इसमें कही, जैसे कोई भी हो, कैसा भी है, किसी के लिए भी कोई भी नेगेटिव भाव, दुख देने का संकल्प भी ना आए। बाबा ने ये कहा ना आज, तो मुझे केवल और केवल सुख देना है। जो भी आत्मा मेरे सामने आएगी, जैसे भंडारा चलता रहता है, तो भंडारा चल रहा है सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का भंडारा चल रहा है। अब भंडारा जब चल रहा हो और सारे क्यू में आ रहे हो, लाइन में आ रहे हो, और सबको देते देते फिर अचानक कोई आए और इसको देख के मुझे ये याद आए कि इसने तो मेरे साथ 10 साल पहले ऐसे किया था, और ये मेरा हाथ रुक जाए, ये रॉयल्टी है, ये दातापन है नहीं ना? तो स्थूल बात तो है नहीं, ये तो सूक्ष्म बात है। अभी जैसे होता है कि सबके साथ हम बहुत प्यार से मुस्कुरा करके मिलते, बहुत प्यार से ओम शांति भाई जी, बहन जी, और ये जो एक व्यक्ति है ना, ये सामने आता है ना जब, तो फिर तो ओम शांति शांति की अशांति हो जाती है और मुस्कुराहट भी चली जाती है। पता नहीं इसके सामने मुस्कुराया नहीं जाता है, ऐसा है कोई? कोई एक होता है कई बार, तो अब उस एक के सामने मुस्कुराया नहीं जा रहा जो नेचुरल हमारा है, वो नेचुरल उसके सामने नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो है ही ऐसा, क्योंकि वो है ऐसा, वो तो ऐसा है, लेकिन मैं कैसा हूं? मुझे ध्यान किस बात का रखना है, वो कैसा है इसका, या मैं कैसा हूं इसका? मुझे ध्यान तो इसका रखना है ना। और मैं जैसा हूं, मेरी अगर कोई क्वालिटी है, मेरी अगर कोई विशेषता है, स्पेशलिटी है, और किसी ने गलती की, उसने बुरा किया, वो भी आज नहीं 10 साल पहले किया था, हो सकता है 10 साल में वो तो चेंज भी हो गया, लेकिन उसने बुरा किया और उसके कारण से मैंने अपनी अच्छाई, अपनी क्वालिटी को छोड़ दिया। बाबा पूछते हैं बच्चों से फिर बाबा कहते हैं ना, फिर आपने ये समझदारी की, नुकसान किसका हुआ? और बाहर से हम क्या बोलेंगे? क्योंकि वो है ही ऐसा। अब इसके सामने मुस्कुराएं, अभी ऐसे ही किस ऐसे व्यक्ति के सामने अगर मुस्कुराएंगे या उससे हम प्यार से बात करेंगे, तो ये तो हमारा एडवांटेज लेगा, फॉर ग्रांटेड ले लेगा हमको, ऐसे समझते हैं ना कि इसलिए उसके सामने तो हम अपने आप को ना ऐसे चेहरा ऐसे बना के रखें कि ये कुछ बात ही ना कर पाए। देखें कभी ऐसे ऐसे भाई बहने कोई, हमने खुद को भी किया है कभी ऐसा अनुभव किया है कि अब ये व्यक्ति कुछ मेरे को बोले, उससे पहले ही मैं अपना चेहरा ऐसे कर लूं कि वो भाग जाए। तो वो जैसे एक होता है ना, एक वॉल खड़ी कर लेते हैं, दीवार खड़ी कर लेते हैं, वो दीवार ऐसी मोटी दीवार होती है वो संकल्पों की, कि कोई उसमें एंटर कर ही ना पाए। अच्छा, वो तो चला गया, उससे मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने अपने आप को सेफ कर लिया ये वॉल खड़ी करके, ये दीवार खड़ी कर ली। लेकिन दीवार तो मैंने खड़ी की ना, अब दीवार किसके चारों तरफ खड़ी हो गई? वो तो आया और चला गया, लेकिन दीवार मैंने अपने चारों तरफ खड़ी कर ली, और जो मेरा मूल स्वभाव था, जो मेरी ओरिजिनलिटी थी, जो मेरी क्वालिटी थी, वो इस दीवार के अंदर कैद हो गई। और ऐसा 2 बार किया, 4 बार किया, 10 बार किया, तो फिर मेरी पर्सनालिटी ही कैसी बन गई? दीवार के अंदर कैद। और बाबा आया है इस दीवार को तोड़ने। इस दीवार को तोड़ेंगे तो जो अंदर का सत्य स्वरूप है, जो हमारा मूल स्वरूप है, बाबा बहुत सिंपल शब्दों में कह देता है, आज भी कहा, कई बार कहा, बच्चे बहुत 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 मीठा बनना है। है तो छोटी सी बात, सिंपल सी लगती है ना सुनने में, बच्चे बहुत मीठा बनना है। और फिर हर रोज बाबा बोल भी रहे हैं मीठे बच्चे, और मीठे बच्चे सुनते हैं तो समझते हैं, अंदर में तो लगता है ना कितना मीठा हूं मैं, अपने में पता तो पड़ता है ना, अगर थोड़ी सी भी चेकिंग करें कि सारा दिन में हम कितने मीठे हैं। लेकिन बाबा हमें हमारे उसी स्वरूप में देख रहे हैं ना, मीठे स्वरूप में देख रहे हैं, लेकिन फिर ध्यान भी दिला रहे हैं कि बहुत बहुत मीठा बनना है। और ये भी कहा, किसी की कोई दुश्मनी भी हो ना आपसे, तो भी आपके अंदर ख्याल भी ना आए बदला लेने का, ख्याल भी ना आए किसी के प्रति कुछ बुरा करने का, या उसका बुरा हो जाए या उसको फल मिल जाए उसके कर्म का, ये सोचना भी मेरा काम नहीं है। क्योंकि ये ऑपोजिट है, ये फिर रॉयल्टी नहीं है, ये फिर वो देने वाला भाव खत्म हो गया। क्योंकि या तो रूहानी पर्सनालिटी या फिर साधारण पर्सनालिटी, तो रूहानियत वाली पर्सनालिटी से एकदम साधारणता में आ गए। अगर जैसे ही हमने ये थॉट क्रिएट किया ना अंदर, होता है कभी कभी ऐसा, कभी संकल्प आया होगा कि ये व्यक्ति इतना बुरा कर रहा है, ये हमेशा ऐसे करता है, लेकिन इसके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कि बाबा पता नहीं इसको कब फल मिलेगा। कभी ऐसा थॉट अगर आ गया सच में, सचमुच में अगर वो व्यक्ति गलत कर रहा है, लेकिन रॉयल वाली पर्सनालिटी क्या होगी ऐसी सिचुएशन के अंदर, जब ऐसी परिस्थिति है तो रॉयल पर्सनालिटी के संकल्प क्या होंगे, कि ये व्यक्ति जो गलत कर रहा है, मेरे को उसे देख करके समझ आ रहा है कि ये गलत कर रहा है। तो पहली बात तो ये कि हम अपने आप को अप्रिशिएट करें कि हमको समझ में आ रहा है सही और गलत का फर्क, और अगर वो गलत कर रहा है तो इसका मतलब या तो उसको समझ नहीं, या तो समझ नहीं कि ये गलत है, या फिर समझ होने के बावजूद भी अगर वो गलत कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर अपने लिए कंट्रोलिंग पावर नहीं, तो वो तो परवश है। उसके अपने बोल, अपने कर्म उसके अपने कंट्रोल में नहीं, जिसके लिए बाबा कई बार कहते हैं भूत की प्रवेशता है उसके अंदर। अब किसी के अंदर भूत की प्रवेशता है और भूत ही चला रहा है उसको, अभी भूत की प्रवेशता हो जाए तो उस व्यक्ति का अपना कंट्रोल तो नहीं है, वो भूत अब जहां उसको लेकर के जाता है वो वैसे वैसे करता है। अब ऐसे व्यक्ति पे गुस्सा आएगा या तरस आएगा, रहम आएगा, तो उसके लिए तो मेरी ओर से और भी ज्यादा शुभ भावना की, और भी ज्यादा स्नेह की जरूरत है, जितनी और किसी को नहीं उस व्यक्ति को उससे ज्यादा जरूरत है। और हमने क्या किया हुआ था, हमने दीवार खड़ी की हुई थी कि इसके सामने तो नहीं, ये तो डिजर्व ही नहीं करता, ये तो इस लायक ही नहीं है। नहीं, उसको तो सबसे ज्यादा दया की, रहम की, कृपा की जरूरत है उस आत्मा को, तो उसके प्रति तो और ही ज्यादा शुभ भावना रहेगी। तो रॉयल्टी माना, मैं अपने आप को उस सीट पर रखूं, देने वाली सीट पर, और इसी में छिपी हुई प्योरिटी है, क्योंकि प्योरिटी का, पवित्रता का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। सिर्फ इतना नहीं कि मैंने उसके लिए गलत नहीं सोचा, लेकिन मैंने कितना अच्छा सोचा उसके लिए, इसका भी भला हो जाए, इसको भी पॉजिटिविटी मिले, इसको भी शांति मिले, ये थॉट्स आए, और ये रॉयल्टी ही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, जो हमारा ये आध्यात्मिक जीवन है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस है ना. एक तो बचपन वाली स्टेज है और फिर एक मैच्योरिटी की स्टेज है. तो जितना जितना हम स्पिरिचुअलिटी में आगे आगे ग्रो करते जाते हैं, हमारी स्थिति जितना श्रेष्ठ बनती जाती है, उतना ज़्यादा उसकी निशानी, जो हमने कहा कि शुभ भावना सबके प्रति, दया का भाव, नेचुरल, माफ़ कर देना और माफ़ी मांग लेना, ये कितना सहज है मेरे लिए, ये देखना है कि माफ़ी मांग लेना और माफ़ कर देना कितना इजीली करते हैं हम या मुश्किल लगता है. माफ़ कर देते हैं कोई कहेंगे, लेकिन माफ़ी मांगना, कोई कोई होता है उसको सॉरी बोलना बहुत मुश्किल लगता है, माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल लगता है. क्यों? क्योंकि जो हम 63 जन्म देह अभिमान में रह करके हम कार्य व्यवहार में आए हैं, रिलेशन में आए, कनेक्शन में आए एक दूसरे के, तो देह अभिमान में जो परिभाषा है ना, वो अलग है हर चीज़ की, और जो सोल कॉन्शियस में परिभाषा है वो अलग हो जाती है. अब देह अभिमान वाले के लिए माफ़ी मांगना मतलब झुकना, मैं क्यों झुकूं? और आत्माभिमानी स्थिति की प्रैक्टिकल स्वरूप में माफ़ी मांगना माना बड़ी बात को छोटा करना, अपना भी टाइम वेस्ट होने से बचाया और दूसरे का भी टाइम वेस्ट होने से बचाया. अपना संगम युग का अमूल्य जो समय है एक एक सेकंड का, उसको जितना हो सके हम बचाएं, जल्दी से फुल स्टॉप लगा के बात को ख़त्म किया, बड़ी बात को छोटा किया, तो अपने प्रति भी रहम किया, दूसरे के प्रति भी किया और एक्स्ट्रा दुआएं कमा ली. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पहले कौन सॉरी बोले, मैं तो बोल दूं पर पहले आप बोलो, क्योंकि गलती तो आपकी भी थी, मेरी थी तो आपकी भी तो थी ना. और यहां पर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में जो पहले बोलेगा वो हायर स्टेज पे है, ये श्रेष्ठता है हमारी, यही एलिवेटेड थॉट है, ये श्रेष्ठ संकल्प है. वो कहते हैं ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है. आगे क्या बोलते हैं, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है. तो इसलिए जो हमारा झुकना है, बाबा ने तो हमें ये सिखाया ना, झुक कर झुकाना, एक बार झुकना 100 बार झुकाना है. लेकिन अब इसमें आगे चलें, अगर झुकाने के लिए नहीं झुकना है, अगर पहले ही इस एक्सपेक्टेशन से झुक रहे हैं, इस उम्मीद से झुक रहे हैं कि मैं झुकूंगा तो फिर ये दूसरा भी डेफिनेटली झुकेगा, और वो तो फिर भी अकड़ा हुआ है, फिर मुझे लगे कि अभी झुकने का क्या फायदा हुआ. तो अगर ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब फिर दोबारा से हम कौन सी स्टेज में आ गए, मांगने वाली स्टेज. क्योंकि जैसे ही मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन, कोई भी प्रकार की इच्छा, कोई भी प्रकार के रिटर्न की उम्मीद कि इसके बदले में ऐसा होगा, अब ये तो हुआ ही नहीं, और ये तो हुआ ही नहीं क्योंकि मैंने अपने मन में क्या सोचा था कि मैंने अच्छा किया है, अच्छा बाबा ने भी तो कहा है, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, आप झुकेंगे तो दूसरा भी झुकेगा, आप माफ़ी मांग लेंगे दूसरा भी आपके सामने सॉफ्ट हो जाएगा. पर ये तो हुआ ही नहीं. अब ये हुआ ही नहीं तो फिर कभी कभी क्या आगे की स्टेटमेंट आती है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है. बाकी सबके साथ ठीक है, लेकिन इसके साथ ये तो इस लायक ही नहीं है. तो जो सत्य ज्ञान बाबा का बताया हुआ फॉर्मूला, बाबा ने फॉर्मूला दिया है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, भला करो तो भला होता है, लेकिन हमने क्या कंक्लूजन निकाल दिया, कोई फायदा नहीं। मतलब हम जो भगवान का बताया हुआ यूनिवर्सल फॉर्मूला है हम उसको गलत कह रहे हैं, हम उसको गलत कह रहे हैं। तो इसमें फिर एक और बात आ जाती है, निश्चय। बताया किसने है फॉर्मूला? फॉर्मूला है ना, लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है कि ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है। अब ये हो सकता है कि मैंने अपने मन में इच्छा क्या रख ली कि मैंने अभी अभी किया और अभी अभी फल सामने मुझे दिख जाए। अच्छा, अभी अभी नहीं, एक हफ्ते में, 10 दिन में, एक मास में मैंने एक विजन बनाया कि एक मास में ये सामने रिजल्ट दिखना चाहिए। अब एक मास तक तो मैंने बड़ा पेशेंस रखा, धीरज रखा, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है। अब मेरा पेशेंस खत्म हो गया, अब और नहीं, बस बहुत हो गया। फिर मैंने, क्योंकि ये तो था कि ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन जो टाइम फैक्टर था ना, वो मैंने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया कि ये तो एक महीने में तो हो ही जाना चाहिए, मैं तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ। एक महीना मतलब मैंने बिना किसी रिजल्ट के, और मैंने लगातार शुभ भावना रखी है आपके प्रति, मैंने लगातार आपके प्रति पॉजिटिव थॉट्स रखे हैं, अब तो रिजल्ट निकलना ही चाहिए। तो ये मेरी अपनी थॉट थी कि एक महीने में रिजल्ट निकलेगा, लेकिन इसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, आप में से कईयों को शायद याद भी होगी। एक बार बाबा ने कहा था कि जब हम किसी के लिए मनसा सेवा करते हैं ना, जैसे सकाश देते या शुभ भावना रखते, क्योंकि जिसके प्रति हम वो थॉट करते हैं वो जहाँ भी है विश्व में, कहीं भी वो आत्मा है, तो उस तक वो वाइब्रेशन पहुँचता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखाई दे रहा है कि उसको तो जैसे वो वाइब्रेशन पता नहीं मिल भी रहा या नहीं, क्योंकि वो तो वैसा का वैसा ही है, उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, उसका बोल भी वैसा, व्यवहार भी ऐसा, जैसे जरा भी उसको टच नहीं हो रहा हमारा वाइब्रेशन। तो बाबा ने ये कहा था कि कई बार उसकी अपनी स्थिति, उसकी जो नेगेटिविटी है वो इतनी स्ट्रांग है, उसका नेगेटिव ऑरा, कि आपका वाइब्रेशन जाता है, पहुंचता है, लेकिन उसके आसपास ही रहता है, अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि उसका अपना ऑरा जो है वो बहुत स्ट्रांग है, नेगेटिव ऑरा। लेकिन जो अगली बात बाबा ने कही थी वो मैजिक है। बाबा ने कहा था, आज नहीं तो कल, चाहे साल दो साल के बाद, कोई ऐसी घड़ी होती है जब वो आत्मा थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, चाहे 2 सेकंड के लिए उसकी नेगेटिविटी कम होती है, आपका भेजा हुआ वाइब्रेशन उसके आसपास ही रहेगा तब तक, और जिस घड़ी उस 1 सेकंड के लिए भी उसकी नेगेटिविटी कम होगी तो वो वाइब्रेशन उसके दिल तक पहुंच जाएगा, उस घड़ी पहुंच जाएगा। तो इसलिए हारना नहीं है, वो नहीं हार रहा है तो हम कैसे हार जाएं? हमारे साथ तो सर्वशक्तिवान की शक्ति साथ में है ना, और श्रीमत के आधार से जो हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं उसमें तो हमको वैसे भी हार तो माननी नहीं है। कब तक नहीं माननी है? 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, कब तक नहीं माननी है हार? जब तक स्वर्ग नहीं आ जाता, जब तक पुरानी दुनिया बदल करके नई नहीं बन जाती है तब तक, क्योंकि ये एक जाएगा तो दूसरा आएगा, एक बात ठीक होगी दूसरी आएगी, इसलिए हार तो हम सकते नहीं, क्योंकि हम सब वही आत्माएं हैं जिन्होंने कल्प कल्प भगवान के कार्य में सहयोग दिया हुआ है। हम ही तो हैं, जो भी थे जैसे भी थे भगवान को हम ही पसंद आए, इसलिए हम तो हार मान नहीं सकते। और ये बाबा को भी पता है, ये बाबा को पता है, इसीलिए तो हमको चुना है कि यही वो आत्माएं हैं जो जब तक स्वर्ग धरती पर नहीं आ जाएगा, भगवान जब तक इस दुनिया को परिवर्तन करने का कार्य संपन्न नहीं कर देगा, तब तक ये भी हार मानने वाले नहीं है ना, तब तक ये भी हार मानने वाले नहीं है। तो वो जो हार मानने की बात है, वास्तव में ये हार और जीत हमारे अंदर ही चल रही है ना हर रोज़। तो इसीलिए जो छोटी छोटी बातें आती रहती हैं, हर रोज़ आती रहती हैं, उसमें कभी भी थक जाना, जैसे थकावट आना, मन की जो थकावट जिसको बाबा कहते हैं, वो कभी कभी हार की वाली स्थिति फील कराता है, भले टेम्परेरी, लेकिन थकना नहीं है, थकना नहीं है हमको। जब तक स्वर्ग धरती पर नहीं आ जाता है तब तक नहीं, और उसके लिए रावण माया भी लगातार लगी हुई है। माया को पता है मेरा जाने का टाइम है अभी, उसको पता है, लेकिन जाते जाते अपने सारे वार सारे हथियार यूज़ कर रही है, और वो हर रोज़ सारा दिन में कितने सारे अलग अलग रूप में चैलेंज लेके आती है हमारे सामने, सूक्ष्म रूपों में भी। अभी किसी के लिए ऐसा भाव आ गया, नेगेटिव भाव आ गया, किसी के प्रति थोड़ा घृणा का भाव आ गया, या थोड़ा किनारा करने का, अवॉइड करने का जिसको कहते हैं। अच्छा, जब बाबा ने ये हमें बताया, एक सूक्ष्म रूप में अगर हम इस बात को देखें, जैसे बाबा ने कहा कि खास करके जब ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों के लिए बाबा कहता है कि आपको छोड़ना नहीं है, आज भी कहा है, घर बार छोड़ना नहीं है, आपको कमल पुष्प समान अपना जीवन बनाना है, ऐसा कहा है ना। अब वैसे ये बात सभी के लिए है, हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 63 जन्मों से और भी बहुत सारे संस्कार थे, लेकिन जो ये वाला संस्कार था, और बहुत अच्छे अच्छे आत्माओं के अंदर भी कभी कभी ये वाला संस्कार होता है थोड़ा अवॉइड करने का, क्योंकि जब हम ये सब के साथ आते हैं या ये बात जो हमें नहीं अच्छी लगती है, तो उसमें हमें मन हमारा खराब होता है, मन डिस्टर्ब होता है, तो इसीलिए मुझे इससे बात ही नहीं करनी, मेरे अंदर नेगेटिव नहीं है आपके लिए कुछ भी, मेरे अंदर आपके प्रति कोई गलत भावना नहीं है, लेकिन बस बात ही नहीं करनी है। बात न करना सहज लगता है, बजाय इसके कि बात करके उसको ठीक करना, सॉल्व करना। होता है ऐसे कई बार कोई कि अब हम इससे बात करेंगे, ये हो सकता है ये रिएक्ट कर दे, पता नहीं क्या बोल दे आगे से, तो थोड़ा डर, और उस डर के कारण हमें लगता है कि इससे अच्छा तो बोलो ही नहीं, इससे अच्छा बस चलते चलते गुड मॉर्निंग करके निकल जाओ, बस इससे ज़्यादा खड़े नहीं होना इस आत्मा के पास। ऐसे ऐसे कभी किसी के प्रति आता है ऐसे कभी? अपने आप चेक कर सकते हैं हम खुद को कि हम ऐसा नहीं, उसके लिए हम गलत सोचना नहीं चाहते, नहीं सोचना चाहते, क्योंकि हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमें पता है राइट क्या है, लेकिन अगर हम उसके पास ज़्यादा देर खड़े होंगे ना, तो मेरा उसके प्रति गलत चल जाएगा थॉट, इसलिए खड़े ही नहीं होना है। तो वो अवॉइड करने का, एस्केप करने का, थोड़ा किनारा करने का, इस तरह से जो आता है, किनारा जो हमको करना है वो किससे करना है? बुराई से तो करना है, विकारों से, बुराइयों से, कमजोरियों से किनारा करना है, व्यक्ति से तो नहीं करने को कहा बाबा ने, व्यक्ति से तो नहीं कहा था, लेकिन वो इजी लग रहा था, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि ये व्यक्ति माना पैकेज है, हर व्यक्ति एक पैकेज है, उसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ भी हैं, है ना। जब तक संपन्न नहीं बन जाते हैं तब तक कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कमजोरी है उसके अंदर। अब जब हम इससे मिलते हैं, अच्छाई से ज़्यादा इस व्यक्ति के अंदर जो बुराई है ना वो ज़्यादा दिखाई देती है, इसलिए अब अलग से सिर्फ उस कमी से मैं किनारा करूं, उससे ज्यादा इजी मुझे क्या लगता है, इस व्यक्ति से ही किनारा कर लूं। लेकिन ये स्वर्ग बनाने का जो प्रोसेस है, जो एक विधि है बाबा ने बताई है, स्वर्ग बनाने की विधि में ये एक ऑब्स्टिकल है, ये एक बाधा है, क्योंकि स्वर्ग में हम सब एक साथ रहने वाले हैं। तो इसीलिए जो वहाँ पर हमको रास करना है, संस्कार मिलन का रास करना है, तो यहाँ पर अवॉइड करने से तो रास नहीं होगा। अब रास ना मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन आपको ठीक से करना नहीं आता, इसलिए मैं तो अलग ही करूँगी, मेरे को इस ग्रुप में तो जमता नहीं है। क्योंकि ग्रुप में ना सब एक का पाँव इधर जा रहा है, एक का हाथ इधर जा रहा है, मेरे से तो नहीं होता है। लेकिन अब इसको अगर स्पोर्ट्स के हिसाब से देखें तो ये टीम गेम है। टीम गेम्स जो होती हैं, जैसे क्रिकेट है या और भी फुटबॉल है, टीम की गेम है ना। जीतेगी तो टीम जीतेगी, हारेगी तो भी टीम हारेगी। चाहे मैं कितना भी अच्छा खेलती हूँ, लेकिन मुझे सबके साथ मिलकर के खेलना जो सीखना है, बात ध्यान से समझने की ये है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना अच्छा खेले, इम्पोर्टेंट ये है कि हम सबके साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन हमारा कैसा रहा। बात यह है कि सबके साथ हमने जो मिलाया संस्कार वो कितना अच्छा मिलाया, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। क्योंकि जो मेरे साथ जाएगा, यहाँ जो भी हम कर रहे हैं ये सब तो हम भूल जाएंगे, जो हमारे साथ जाएगा, ये जो एक दूसरे के प्रति भावना थी, एक दूसरे के साथ जब हमको मिलाना था, उस मिलाने के लिए कभी कभी हमको कुछ थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा अपना जो मेरी क्षमता है, जो मेरी क्वालिटी है, या ऐसा कहें मेरा पोटेंशियल उससे ज़्यादा है, मैं उससे ज़्यादा कर सकता था, लेकिन मुझे आपके साथ चलना है तो मुझे अपनी स्पीड थोड़ी सी कम मैच करने के लिए अपनी स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ी, पहुंचने में थोड़ा देर हुई, लेकिन साथ जो साथ निभाने का जो संस्कार बना, जो मेरे साथ जाएगा वो क्या जाएगा, वो ये संस्कार जाएगा। कितनी देर में हम डेस्टिनेशन पे पहुंचे थे वो इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट ये था कि किस तरह से एक दूसरे के साथ कदम मिला करके, और कभी कभी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके, थोड़ा सा अपनी स्पीड कम करके, माना अपनी स्पीड कम करना यहाँ एक चीज़ और सिखाता है कि अपने अभिमान को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते 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 फिर वो जीरो हो जाएगा। लेकिन वो कब कर पाएंगे, ये हम मिला कब पाएंगे, जब हम दो चीज़ें एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट, जब हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और सम्मान हम कब कर पाते हैं, क्योंकि ये भी एक रॉयल्टी की निशानी है, जो रॉयल है वो सबका सम्मान करेगा। और सम्मान कब कर पाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है जब हम स्वमान में हैं। तो स्वमान में रहना और सम्मान देना, ये दोनों ही चीजें कब हो पाती हैं, जब हम स्वयं को और दूसरे को उस नजर से देखते जिस नजर से बाबा देखता है, जिस नज़र से भगवान देखता है मुझे, जब मैं अपने को उस नज़र से देखती हूँ तो ये स्वमान बन जाता, और जब मैं आपको उस नज़र से देखती हूँ जिस नज़र से भगवान आपको देखता है, तो ये सम्मान बन जाता है। तो इसीलिए जिसको भी देखना है मुझे उसी नज़र से देखना है, उसकी नज़र से देखना है। तो जब उसकी नज़र से देखेंगे तो मेरी नज़र, मेरी दृष्टि ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी? प्योर। और जैसे ही प्योरिटी आएगी तो रॉयल्टी नेचुरली आ जाएगी, जिसमें देने का भाव नेचुरल हो जाएगा। तो आपका ऑरा ऐसा बन जाएगा कि आपके आसपास वालों को कंफर्टेबल फील हो, सहज सरल, कोई भी प्रकार की रिजिडिटी नहीं। सो यही हमारी पर्सनालिटी है ना, प्योरिटी रॉयल्टी पर्सनालिटी। थैंक यू। ओम शांति।